हमारे अनर्थ ये सब हैं, में तो घोर रात में तो दिखते ही नहीं है, सवेरा होने पर भी अभी किसी किसी को दिखते हैं, किसी किसी को नहीं भी दिखते हैं। ये सब अपराध और अनर्थ है, कुहरा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने पर ये सब जा सकते हैं। अब तृतीय जो पहर आया, तृतीय ज्ञान, उसमें कुछ वैष्णवों का संग हो गया और उन्होंने कहा कि हरि नाम करो। अभी हरि नाम की कुछ उपलब्धि नहीं है, जो क्या है कुछ भी उपलब्धि नहीं। मान लिया कि विक्रमाजीत राजा है, नाम सुना है, तो वो कुछ बड़े दयालु स्वभाव से प्रजाओं पर दया करते, इसलिए वेश बदल कर वो कभी राज्य में घूमने चले जाते। तो एक दिन एक कुटिया में गए और कुटिया में गए देखा एक बूढ़ा और बूढ़िया वहां पर। जाड़ा का समय किंतु कुछ भी तन ढकने के लिए नहीं, किसी प्रकार से आग जला रहे हैं और बड़े कष्ट में। राजा गए, मुझे भूख लगी है, बहाना बना करके और अपने वैसे ही सज करके गए विक्रमादित्य, और जा करके कुछ है बड़ी भूख लगी। तो उन्होंने जैसे तैसे मोटी मोटी कुछ साग सब्जी मिला करके, आटा मिला करके कुछ मोटी मोटी दो एक रोटी बनाई थी अपने लिए और खाने ही जा रहे थे। इतने में उन्होंने उसमें से उसको आधा दे दिया और आधा रख अपने और उनको खिला। उन्होंने कहा ये विक्रमादित्य, आप लोग इतना दुख कष्ट करते हैं, यहाँ के महाराज तो बड़े दयालु हैं, उनको आप लोग अपनी स्थिति सूचित क्यों नहीं करते। उन्हें कहा मैं जानता, हम लोग जानते हैं राजा बड़े दयालु हैं, बड़े उपकारी हैं, सब कुछ ठीक, किंतु हम लोग उनको कष्ट देना नहीं चाहते। हम लोगों का तो किसी न किसी प्रकार से चल ही जाता है, तो उनको हम कष्ट नहीं देना चाहते, हम लोग अपना किसी प्रकार से ऐसा। उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा और वो चले गए। सोच रहे हैं कि देखो इतना गरीब होने पर भी हमारी कैसी आवभगत थी और कितने प्रेम से हमको खिलाया और कैसा आदर किया, अपना कुछ टूटा फूटा कंबल भी दे दिया उनको, और उनके जहां तक जो कुछ हो सकता था उसके लिए उन्होंने किया। राजा ने सोचा कि मैं कितना निष्ठुर और कितना ऐसा हूं, जो हमारे राज्य में ऐसे भी लोग हैं जहां तक मेरी पहुंच नहीं है और मैं कुछ उनके लिए नहीं कर पा। बड़े दुखी होकर के लौटे और दूसरे दिन ताम्र पत्र पर लिख दिया कि ये राज्य राज्य की जितनी जो कुछ है आमदनी आज से उस बूढ़े और बूढ़ी को दे दिया गया, और हमारे तरफ से ये नियुक्ति रहेगी लोगों को जो इसको किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। तो यदि एक राजा जिसको अंतर्जामी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यदि एक राजा अपनी प्रजा के लिए इतना कर सकता है, तो ये भगवान के हम संतान हैं, संतति हैं, वो और अंतर्जामी हैं, हमारे मन की प्रत्येक भावनाओं को जानते हैं, और हम उस प्रभु का नाम लेते हैं जान करके या अनजान में, तो वो कृपा नहीं करेंगे। इसलिए हाराम यदि निकला तो उसका संधि विच्छेद करके हाराम लगा दिया और बहाना करके भी उस पर दया। इसलिए भगवान दया करते हैं, बहाना करके भी लोगों पर दया। इतने बड़े दयालु हो, उनके समान और कोई दयालु। भगवान के नाम की महिमा जितनी कही जाए वो कम है, किंतु ये आती है संतों की कृपा से समझ। बिना संतों की कृपा के उनकी कृपा क्या है, भगवान का नाम क्या है, भगवान क्या है, ये हम नहीं समझ सकते। तो अब ये तीसरे प्रण में ये अनुभव होने लगता है कि मैं कहाँ हूँ और भगवान कैसे हैं, ये कुछ कुछ समझ में आने लगता है। हम लोगों को अभी तक पता नहीं है हम कहाँ पर हैं, किस अवस्था में हैं, उनको पता है, प्रभु को पता है। अभी अंधकार है ना प्रकाश है, यहाँ पर क्या है, अभी अंधकार घोर है, न भगवान दिखते हैं न जीवात्मा दिखती है ना, अभी अभी के लिए कर, अभी तो पीछे आ रहा। क्या अच्छा है क्या बुरा है हमको कुछ पता ही नहीं है, किंतु एक बात तो स्पष्ट है, जब साधनों का समय मिलने लग गया थोड़ा थोड़ा, तो कुछ विचार शक्ति आ गई है। जैसे भी हम हैं, हम देखते हैं कि अपराध से, अपूर्व जन्मों के पापों से हमारा चित्त इतना मलिन हो गया है कि भगवान सर्वत्र होने पर भी हम उनको नहीं देखते। आत्मा भी शरीर में है, मैं, और मैं भी दिखाई नहीं, और शरीर को हम लोग मैं कह रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, अपमान प्रति क्षण क्षण में हम लोगों को मिल रहा है, बहुत दुखी भी हैं, अपनी परिस्थिति से कोई भी सुखी नहीं है। इसको जो महात्मा कुछ लोग हो जाते हैं, वो अपनी आत्मा को कुछ देख करके कुछ अनुभूति कर सकते, सभी लोग हम लोग अभी नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी स्थिति याम में, जहाँ पर हम लोग अभी पहुँचने जा रहे हैं द्वितीय याम में, अब ये देखते हैं कि हमारी आत्मा की क्या स्थिति है। कोई चीज मीठी है किंतु वो लग रही है कड़वी, सब लोग कहते हैं ये मिश्री है मीठी, किंतु वो यदि कड़वी लगती है तो क्या समझना चाहिए, कुछ रोग है, ये सब लक्षण है। तो हम लोगों को भगवान का नाम मीठा है, सब शास्त्र कह रहे मधुर मधुरमे तत् मंगलम मंगला, किंतु हमारी उसमें रुचि नहीं हो रही, तो क्या समझेंगे,
रोग है,
जरूर कुछ है, जरूर कुछ गर्व है, ये हमारे पूर्व जन्म के अपराधों का। भगवान की कथा बड़ी मधुर है और कोटि कोटि पापों को, जन्मों के पापों को भी झट उड़ा देने वाली, शंकाओं को उड़ा देती है, संशय विहग उड़ाओ नहारी, संशय विहग, विहग माने चिड़िया, संशय रूपी चिड़िया को उड़ा देने वाली है। जैसे कोई चिड़िया बैठी है ना, ऐसे बजाया और चिड़िया उड़ी गई, ऐसे भगवान की कथा है कि संशयों को भी, अभी हम लोगों में संशय है, अच्छा ये महाराज जी सचमुच में अभी मध्यम श्रेणी के भी भक्त हैं कि नहीं, संशय है कि नहीं, संशय, अच्छा जी जो बातें करें ये अनुभव है कि नहीं है। शास्त्र में इतनी बात लिख दी गई, भक्ति करने से सब क्लेशों को दूर कर दे, हमारा इतना दिन हो गया भगवान का नाम लेते हुए क्लेश दूर हुआ नहीं, यह संदेह है कि नहीं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं, जानते हैं, सुना है ये सब तरह से कि देखो सब तुम्हारा कि कौन पाखी ऐसे से ना बांध, तो संदेह भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नहीं, यदि है तो हम लोगों ने इतना दिन नाम किया है, तो ये नाम की कृपा क्यों नहीं आ रही, हमारे दुख क्यों नहीं दूर हो रहे हैं, हमारे अंदर में ऐसी शक्ति नहीं क्यों नहीं आ रही है, अः तू मर जा तो मर जा, हमसे कोई झगड़ा किया कभी तू मर जा, किंतु नहीं होता है। अच्छा तुमको लड़का नहीं होता, अच्छा तुम कभी लड़का हो जाए, यदि अभी समर्थ हो जाने तभी तो सब लोगों को मथुरा वासियों सबको क्या न कर दें हम लोग। तो ये भगवान में नाम में समर्थ है कि नहीं, जब विचार करते हैं तो देखते हैं कि संदेह आ जाता है। ये सब क्या चीजें हैं? पूर्व जन्मों के कुछ संस्कार हैं, अपराध इत्यादि कारण है, जो हम कहने पर भी समझ में नहीं आता। गुरु के वचन में विश्वास नहीं होता, शास्त्रों के वचन में भी विश्वास नहीं होता। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन महाजनों को जब थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं उनको ये चीज की अनुभूति होती है और तब उसके लिए ये अनुताप करते हैं, हम लोग अनुपात अभी नहीं करते। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी नाम कर रहे हैं और मुकुंद माला स्तोत्र का अनुवाद करते हुए रिपेंट कर रहे हैं, अथवा जामुन भावावली। जामुन माने क्या? जमुनाचार्य। जमुनाचार्य कौन है? रामानुजाचार्य के गुरु। उस समय में वो अंतिम अलवर है, अलवर माने सिद्ध भक्त। कैसे भक्त हैं? जिसको जो कह देते हैं वही हो जाते। वो कहीं चले जाते थे, भूत पिशाच जिसको लगा रहता था ना, तो अपने आप वहां से बाप बाप करते हुए भाग जाता था। और ऐसे वो थे जो अंतिम समय में जब जाने लगे, जब परलोक जाने लगे, तो उनकी तीन अंगुलियां ऐसे बंद थी। रामानुज वहां पर अंतिम समय में पहुंचे, एक अंगुली केवल खुली और तीन अंगुली मुड़ी हुई। रामानुजाचार्य ने कहा जे मैंने इनसे दीक्षा नहीं ली किंतु मन ही मन में तीन को गुरु बना दिया है और ये हमें छोड़ करके चले गए। रोने लगे, विलाप करने लगे, बोले जे गुरु जी को एक बार उतार करके हमें दिखलाओ तो उनका मुख दर्शन करेंगे, उनका श्री अंग दर्शन करेंगे। तो वो भी रामानुज को बुलाने के लिए अपना एक भक्त भेज रखा था, वही विवाह करके इनको आ रहा था। तो रास्ते में हो गई भेंट, उन्होंने कहा थोड़ा सा उतार करके हमको दर्शन करा। उतार दिया, उनका ऊपर का कपड़ा हटा दिया गया, उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। फिर देखा, देखकर कहा कि भाई सब अंग तो ठीक है, ये तीन अंगुली बंद क्यों है, इसका कारण क्या? तो किसी से पूछा, किसी ने नहीं बतलाया। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी की इच्छा से मैं अभी इनसे ही संन्यास लेता हूं। एक आने के साथ एक अंगुली खुल गई, अब दो ऐसे हो गई और दो ऐसे गई। उन्होंने कहा कि मैं वेदांत का वो ये है ना, इसके अनुसार में बोधायन, बोधायन आदि हमारे पूर्व पुरुषों के इच्छानुसार भक्ति मूलक मैं भाष्य करूंगा। बस साथ ही साथ में दूसरी अंगुली भी ऐसे। उन्होंने कहा कि मैं वैष्णवी सदाचार का और उनके ग्रंथों का मैं सर्वत्र विश्व में प्रचार करूंगा। मैं ये तीन प्रतिज्ञा करता हूं अपने गुरु जी के सामने, ये हमारे गुरु जी। बस वो भी खुल गई। तो वो उनके गुरु जी कैसे होंगे और ये रामानुज कैसे हैं, जिनके गुरु जी, जिनसे जब ये शिष्य का इतना बड़ा पता, तो वो गुरु जी जो है ना उनका कैसा पता? तो वो मर गए कैसे, ये संदेह हम लोगों को हो जाएगा। किंतु वो मरे नहीं, उस समय भी समाधि में है, हम लोगों के समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन चीज। तो ऐसे लोग अपने को किस प्रकार से भगवान के यहाँ अपने को दीनहीन मान करके और प्रार्थना करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी उसी चीज को ग्रहण करके कहा है। इस अतृतीय प्रकार के भजन तृणादपि सुनिज तरोरपि सही सुनना अमानिना मान देना, तब भगवान का कीर्तन ऐसे गुणों से युक्त होकर होता है। किंतु हम लोग ऐसा हो नहीं पाते, एक निष्कपट नहीं हो पाते, सब समय कपटता हृदय में रहती है। भगवान किसी न किसी प्रकार से गुरु वैष्णव भी कहते हैं किंतु उस कपटता को छोड़ नहीं पाते। इसलिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, न धर्मनिष्ठो अस्मि न आत्मवेदी न भक्ति भक्तिमान पच्चरणारविंदे अकिंचनो अनन्य गति शरण्य तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्य। ये यमुनाचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा। स्तोत्र माने स्तोत्र। मैं बहुत दीनहीन हूं, हमारे समान अनन्य गति, अब हमारी कोई गति दूसरी आपके अतिरिक्त नहीं है, न धर्म निष्ठोष, धर्म में मेरी निष्ठा नहीं है। धर्म कौन? पहला एक वर्णाश्रम धर्म और दूसरा है आत्मधर्म और तीसरा है प्रेम धर्म भगवान के प्रति। इन तीनों धर्मों में किसी में भी हमारी निष्ठा नहीं है। साधारण तरह से वर्णाश्रम धर्म में ही मेरी निष्ठा नहीं, तो आत्मधर्म की तो बात है, आत्मा नित्य अजर अमर है, उसमें कोई भी पाप ताप अपराध कुछ नहीं है, वो सब समय निर्मल आत्मा है, ऐसी भी निष्ठा हमारे अंदर नहीं। वर्णाश्रम धर्म माता पिता इत्यादि की सेवा, इसमें भी तो रुचि नहीं, किसी चीज में भी अभी निष्ठा नहीं हमारी। और प्रेम धर्म जो है आत्मा का धर्म है, भगवान की सेवा या भगवान के प्रति प्रेम, ये भी नहीं है। न धर्मनिष्ठ हो अश्मी न च आत्मवेदी, न आत्मा इत्यादि को ही मैं जानने वाला और न भक्तिमान, यही तीनों को अलग अलग बस बतला रहे। न भक्तिमान वही चरणार, तुम्हारे चरणों में हमारी भक्ति प्रेमा भक्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तीन चमो अनंत में मैं अकिंचन हूं। रामानुज यमुनाचार्य जी अकिंचन थे, हम लोग अकिंचन नहीं है। पांडव लोग अकिंचन थे। पांडव लोग कैसे अकिंचन थे? उनका सब कुछ रहता हुआ भी उनका अपना कुछ भी नहीं था, एकदम अकिंचन, उनका कुछ भारी नहीं। द्रौपदी उनकी भार्या नहीं, वो कृष्ण की प्रिय सखी। अभिमन्यु उनका लड़का नहीं, उनका वो भक्त। इस तरह से उनका अपना कुछ कहे जाने वाला नहीं था। अकिंचनो जिसका अपना कुछ नहीं, हमारा क्या, हमारी अभी लंगोटी है, अभी लंगोटी कोई ले ले हमारी, तो देखिए जैसे क्या कर देता, अभी पहाड़ को भी तोड़ दूंगा उसके। यदि हमारा टूटा हुआ जूता कहीं ऊपर से घर में से कोई ले ले तो देखिए ये क्या हो जाए। रामानुज के शिष्यों ने, रामानुज ने दिखलाया, रामानुज का एक शिष्य था वो शूद्र जाति का, और बहुत से हजारों थे बड़े बड़े हमारे जैसे आप लोगों जैसे त्यागी, अंत में उन्होंने उसको अपना लिया, वो शरणागत हो गया, बड़ा गुंडा बदमाश जाति का, किंतु उसको अपना लिया और एकदम वो बदल करके सचमुच में बादशाह हो गया, परम संत बन गया, किंतु गृहस्थ वेश में रहता। जबकि कावेरी में स्नान करने जाते तो ब्राह्मण शिष्यों के कंधे पर हाथ रख करके उतरते सीढ़ियों में, आज जब स्नान कर लेते तो
कंधे पर हाथ रखते,
वो अपना गृहस्थ भक्त जो शूद्र था उसके रख करके। तो उनके शिष्यों ने कहा कि हम लोग पहलवान तो नहीं है जैसा ये पहलवान है, किंतु चार पांच आदमी पकड़ करके तो आपको तो उठा ही सकते थे, तो क्यों नहीं आप हम लोगों के कंधे पर हाथ रख करके चलते हैं जो उस शूद्र के ऊपर में रख करके। बड़ा भारी बदमाश गुंडा टाइप का कहा जैसे ठीक है। उस समय कुछ उत्तर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि आज गुरु जी को निरुत्तर कर दिया, गुरु जी कोई उत्तर ही नहीं दे सके, ऐसा प्रश्न हम लोगों ने किया। हाँ, हम लोग भी ऐसे सोचते हैं, हाले आज के गुरुदेव अमर
पानी
पाए, आज गुरु जी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, आज उनको मैं ठीक कर दिया। गुरु जी चुपचाप रहे अवसर देखने। एक दिन उन्होंने कहा उसी को शूद्र को, शुद्ध जो था उसका नाम कोई नाम था
उसका,
तो उनको कहा एक बात करो, हमारे शिष्य लोग जाएंगे स्नान करने, उनकी लंगोटियों को जरा हेर फेर कर देना, वो वहां पर तार पर टंगी है ना, तो अंतिम वाले को उधर में रख देना और बीच वाली को फिर उधर रख देना, ऐसे हेर फेर कर देना बस, और कुछ मत करना, और अपने भजन में लग देना। तो वो लोग जब स्नान करके आए तो लंगोटी खोजने लगे, अच्छा कौन लंगोटी ले लिया, वो कहता है जी हमारी लंगोटी कौन, वो कहता है हमारी कौन ले लिया, और परस्पर में झगड़ा, और वो झगड़ा इतना बढ़ा कि मार पीट की नौबत आ गई। अब जब हुई तो रामानुज ने उनको, भाई ये लंगोटी किसने दी थी, तो आपने दी थी, ये लंगोटी तुम घर से ले आया था, आ तो नहीं तो घर से तो नहीं लाया, तो फिर तुमको लंगोटी दे देंगे, इसके लिए लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है, इसमें तीन अंगुली चार अंगुली चौड़ी कपड़ा है, मैं अभी तुमको दे पा, बस उन्होंने मंगवा कर, अरे भाई देखो तो इधर उधर देखो तो देखा तो उधर टंगी हुई है, उसका देखा उधर टंगी है, फिर लेकर के उनको दे दिया गया, फिर वो शांत। और दूसरे दिन उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, ये अभी इसको मैं यहाँ पर हरि कथा में लगाए रखूंगा, आज तुम इसके घर में पहुंच जाना, उसकी स्त्री सो रही होगी, उसका सर्वस्व चोरी करके डकैती करके ले चला, उसको पता नहीं, इसके बाद जब तुम आ जाएगा हमको संकेत दे देंगे हम, तब तुम खुद जा करके अपने घर में चले, तब इसको छोड़ेंगे ये जाएगा। बस उसने उनको, रामानुज ने उनको बातचीत में लगाए रखा हरि कथा के माध्यम से, और वहीं पर एकदम निश्चिंत होकर कह रहे थे 12 बज गया, छोड़ा नहीं, और इतने में वो लोग गए घर में, देखा कि उसकी स्त्री अपने पति के लिए प्रतीक्षा करती 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 लेट गई। तो उसने देखा जी हमारे गुरु भाई लोग आ गए, किस लिए आए, बड़े दुख के भी आ रहे थे, ये चोरी करने की नीयत से आए हैं, तो इन्हीं का तो है, बस वो जानबूझ करके सो गए। उन्होंने सब माल उठा लिया, जितने हीरे जवाहरात सब कुछ थे सब ले लिया, केवल उसके हाथों में वो हीरे जवाहरात के ये सब थे कब अलंकार, एक हाथ नीचे करके एक हाथ ऊपर में सोच, ऊपर वाला तो उन्होंने ले लिया, तो उसने सोचा जी ऊपर वाला ले लिया तो नीचे वाले भी ले लेते, वो थोड़ा सा बहाना करके ऊपर में आंख बंद किए हुए वहाँ करते हुए घूमी, इतने सोचा कि उन लोगों ने जैसे उतर जग गई, बस उसी को अवस्था में छोड़ करके चले गए। रामानुज से सिग्नल दिया जी हम लोगों ने सब अच्छी तरह से सब चोरी करके और लेकर के चले। रामानुज ने कहा अब आप जाओ रात में घर में सोने के। वो गए तो स्त्री उनके लिए प्रतीक्षा कर रही थी, तो उन्होंने कहा रे तेरे हाथ में एक हाथ में अलंकार है दूसरे हाथ में अलंकार नहीं, ये इसका कारण क्या। तो उन्होंने कहा जैसे मैं सो रही थी तो आपके गुरु भाई लोग आए, देखा जैसे कुछ चोरी करने के नियत से, तो मैं आंख बंद करके सचमुच में जैसे सोते हैं वैसे सो गई, उन्होंने सब ले लिया, और इसके बाद में हमारे हाथ का ऊपर वाले का भी अलंकार कर ले लिया, तो मैंने सोचा जैसे ये अलंकार तो निकाल लिया तो इस अलंकार को भी ले लें, इधर से मैं जरा घूम गई, इतने में वो लोग चले गए। शिष्यों को रामानंद ने कहा था जैसे घर में जाकर के क्या बात होती है, कैसे रोते और लड़ते झगड़ते हैं जरा देखा, गए तो देखा उनकी स्त्री रो रही, ये डांट रहे तुम हाथ को ऐसे ही करते करते ऐसे क्यों नहीं कर दिया, जो घूमने क्यों गई, माने इस तरह से करवट फेरने क्यों, तुम हाथ को थोड़ा सा ऐसे ही बढ़ा देती, वो बिगड़ रहा था, एक आधे जिसे मुझसे थोड़ी सी टूटी हो गई, मैं इतना नहीं समझी, जैसे भी हो अच्छी बात हुई, हम लोगों को ये क्या करते ये वैष्णव की सेवा में लग गया, वो लोग क्या करेंगे वैष्णव भगवान की सेवा में या अपने सेवा में लगाएंगे। ठीक रामानुज दूसरे दिन सब लोगों को बुलाया, देखो कहाँ ये और कहाँ तू, हमारे तो ये लंगोटी के लिए झगड़ा करते थे, इसका सर्वस्व ये ले रहे हैं ले करके चले गए, उसके लिए ये लुटिंदा की और भी हमारा नहीं, इसको कहते हैं निष्किंचनत्व, भक्तों में ऐसी यदि भावना आई तब तो वो भजन कर सकते। तो हम लोग एक एक पैसा भी छिपा करके यदि रखें तो उसे भगवान की जरूरत है ना, वैष्णव की जरूरत है ना, गुरु की जरूरत है, उनको क्या जरूरत है। किंतु तुम्हारी ये जो वृत्ति है छिपाने की, चोरी करने की, रखने की, ये वृत्ति बहुत जरूरी है। ये भगवत ए ठीक कर बस तो ये वृत्ति बड़ी खराब है। हम लोग इस वृत्ति को नहीं देख सकते। ये वृत्ति को देखता कौन है? जो भजन करने वाले थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं वो अपनी इन वृत्तियों को, जो बुरी वृत्तियां हैं, और अनुमान लगाएंगे ये वृत्ति कैसे हुई पूर्व जन्म की, वो अनुमान कर सकते। हम लोग अनुमान नहीं कर सकते। एक विषय को, विषयों में खूब आसक्ति है, बहुत आसक्ति है, वो समझेगा। किंतु वैष्णव में जहां थोड़ी सी हुई ना, वो समझ जाता है और उसको दूर करने की चेष्टा करता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अकिंचन अनन्य गति हूं, मैं आपके चरणों में शरण मैंने लिया, आपके चरणों में मैं शरणागत हुआ, आप हमारी रक्षा करें। इसलिए वो कहते हैं न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो जन्मया व्यधायि सोहम विपाक अवसरे मुकुंद क्रंदामि संप्रति अगति स्तवाग्रे हेन दुष्ट कर्म नहीं जहां आमि करि नहीं सहस्र सहस्र बार हरि से सब कर्म फल पे अवसर बल आमरे पीछे जत्रोपरी गति नहीं देखी आर कांति हरि अनिवार तुमार जत्रते बेयामी जा तुमार हय मने दंड देहय किंचने तुमी मोर दंड धर स्वामी। ऐसा जगत में कोई खराब काम पाप काम नहीं है जो मैं दुष्ट उस काम को नहीं किया। सोच रही है क्यों? हम अनुभव करें कि पूर्व जन्म के इन पापों के वजह से ही भगवान का नाम लेते हमारे आंखें में अश्रु नहीं आते, हृदय द्रवित नहीं होता, ये जरूर हमने पाप, इसलिए वो कहा जहां भी करी ना सहस्त्र सहस्त्र बार सहस्त्र बार। इसलिए कपटता दंभ और भक्ति का ले कपटता लंभ हमारे अंदर, और भक्ति के प्रति नाम के प्रति तनिक भी हमारी रुचि नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे अंदर में जरूर पाप है। अथवा भट्ट महाराज जबकि हिरण हुए तो उनको पता था कि नहीं, जब मैं हिरण हुआ हूं किस पाप से, उनको तो पता है ना, वो जाति स्मरण। भजन करते करते यदि ऊंचाई से कोई नीचे थोड़ा सा गिर जाता है तो पूर्व जन्मों का पापों का उसको स्मरण होता है, इसलिए उनके सामने वो सब पाप प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। जिस समय सूरत राजा, सूरत नाम का एक राजा चंडी में वो बलि देता था, बकरे भेड़ जो थी उनको वो सब काटता था और यज्ञ करता था, अग्नि में स्वाहा करता था, घी के बदले घी तो दिया जाता, और उन बकरों के, उन भेड़ों के, उन जीवों के, यहां तक कि मनुष्यों के भी मुंड उसमें स्वाहा कर दिए जाते। जब उसको स्वर्ग मिलने को हुआ तो सब जितने थे वो मरे हुए प्राणी सब उनकी आत्मा उनके सामने उपस्थित थी, और कहा जी कहां जा रहे हैं? तो मैं जा रहा हूं स्वर्ग को। तो स्वर्ग भोग पीछे होगा, अभी जो हम लोगों को तुमने काटा है उसका जो पाप का फल है पहले भोग लो, तब फिर पीछे, बस उसको मार रहे हैं, फिर जन्म होता फिर मारते हैं, फिर जन्म होता फिर मारते हैं। ये देख करके दृश्य एकदम उन्मूचित होकर के गिर पड़ा। अब वो देख रहा है हमने हजारों जन्मे में या इस जन्म में जो जो पाप के वो प्रत्यक्षवत उनके आ रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा थी, इसलिए उनको अनुभूति। हम लोगों को तो अनुभूति होती नहीं जो हमने क्या पाप किए, जरूर पाप किए हैं, नहीं तो इस शरीर में हम लोग आ ही नहीं सकते हैं दुख भोगने के लिए, जन्म मरण का दुख नहीं होना इसलिए जरूर है। इसलिए वो कहते हैं ऐसे हमने कोई पाप कर्म नहीं है बचे जिसको सहस्त्र सहस्त्र बार मैंने नहीं किया, और फिर भी जन्म में जान करके भी पाप करना एक साधारण बात है, चोरी करना भी कोई हर्ज उतना नहीं होगा, किंतु गुरु जी के साथ में चोरी करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, उनसे कपटता करना, ये क्या हो जाएगा? ये तो अपराध हो जाएगा ना, उससे भी हम नहीं डरते, ये बड़ी बात है। उसी को स्मरण करके ये कह रहे हैं ऐसा पाप नहीं कोई जो मैंने शास्त्र शास्त्र कहा, इसलिए इसमें हम हो गए। एक आदमी सारा जीवन सुख पाया, खूब बड़ा धनी मानी रहा, और अंत में मरने के समय में कुछ दिन पहले खाट पर पड़ गया, पानी नहीं पी सकता, कैंसर का रोग हो गया, रोग के लिए दवा हो रही है, मर्ज उतनी बढ़ती जाती है जितनी दवा होती है, करते 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 जो दुख नहीं भोगना चाहिए ना वो सब हो, क्या समझोगे? घर ही घर में तो जन्म हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ कुछ भी काम नहीं आया, इसलिए वो कह रहे हैं यही सब